Он как где?
Thank you.
संपत्ति
जगन्नाथस्तकं पुण्यं या पठे प्रयतासुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सदाचति। जगन्नाथ स्वामी की बलदेव सुभद्रा मैया की जगन्नाथपुरी धाम की शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेम आनंद। धन्यवाद, बड़ा सुंदर गाया आप लोगों ने, मैं भी सीखा आप लोगों के साथ में। देखिए कितना सुंदर आशीर्वाद दिया जा रहा है, जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम। ये जो जगन्नाथ जी के गुणों में जो 8 श्लोकों को रचना हुआ है अष्टकम, वो पुण्य है। पुण्य मतलब पवित्र करने वाला और पाप को नष्ट करने वाला। जगन्नाथ अष्टकम जैसे पुण्य श्रवण कीर्तनम भागवत जी ने पठे, अगर कोई इसको पढ़ता है प्रयत्न करता है, नहीं आता है उसको लेकिन फिर भी ट्राई करता है भक्तों के पीछे, प्रयत्न करता है या बार बार पढ़ता है या प्रेम से पढ़ता है, प्रयत्न के भी अपने अर्थ होते हैं। सुचि क्या होगा? सुचि शब्द ना वही पुण्य अर्थ है, पवित्र। सर्व पाप विशुद्ध आत्मा, वो आत्मा विशुद्ध हो जाएगा, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और विष्णु लोकम से गच्छति, वो भगवान श्री विष्णु के लोक को, धाम को गच्छति जाएगा। अब मैं सोच रहा था कि समझने के लिए तो लिखा नहीं इसमें कि जो समझेगा नहीं, जो पढ़ेगा गाएगा वही पाप से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम जाएगा। समझेगा तब तब तो कृष्ण का प्रेमी बन जाएगा, कृष्ण उसके दर्शन को जगन्नाथ जी तरसते रह जाएंगे। तो आप सभी वैष्णव के प्रेम आग्रह से हम कुछ प्रयास करेंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी के इन अष्टकम के आधार पर जगन्नाथ जी के स्वभाव प्रभाव गुण लीलाओं को कहने सुनने का। तो उसके पूर्व हमने केवल गाया, आइए प्रभुपाद की पावन परंपरा अनुसार मंगलाचरण करके इन श्लोकों के अर्थ में भाव में हम प्रवेश करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये महोदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे हरे। ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को भी प्रणाम कर लेते हैं, आप सभी कृपा करके दोहराइए। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशनम्, त्राहि मां पुंडरीकाक्षम्, पतितं भवसागरे, नमस्ते तोहलग्रामम्, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रात्वं सर्वेशा भद्रदायिनी, सुदर्शनम महाज्वाला कोटिसूर्य समप्रभ, अज्ञानं तिमिरंधाना वैकुंठात् प्रदर्शक, तीनों को और सुदर्शन को भी प्रणाम, जो जगन्नाथ जी के बाजू में दारू रूप में है। सुदर्शन भी, ठाकुर जी भी दारू बन गए हैं तो सुदर्शन भी दारू बन गए, इसकी भी अपनी कथा है। तो फिर से दोहराते हैं ये प्रथम श्लोक जिस पर हम व्याख्या करेंगे। कदाचित् कालिंदी तटवीति न संगीत तरलो, नारी वदन कमला स्वाध्य मधुप, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे, देखिए एक निवेदन है कि वशिष्ठ संहिता में एक श्लोक है, रामस्य नाम रूपस्य लीला धाम परात्पर एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान श्री राम के नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में और उनके धाम में परात्पर ये सब सेम है। एतत् चतुष्टयम् नित्यम, जैसे भगवान नित्य है तो उनकी लीला भी नित्य, उनका धाम भी इटरनल मतलब सनातन है, और परात्परम आपस में जैसे भगवान में शक्ति है उसी में शक्ति, कोई अंतर नहीं, सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया है अपने तात्पर्यों में कि भगवान के नाम रूप लीला धाम में कोई भेद नहीं, सब दिव्य है। तो फिर ये भागवत ये गीता जो भगवान के नाम और गुण के विषय में है, ये शब्द भी दिव्य है। जैसे जगन्नाथ जी सच्चिदानंद विग्रह है तो उसके गुण और दिव्य लीलाओं को लेकर रचा गया ये जगन्नाथ अष्टकम भी दिव्य, इन शब्दों में बड़ी शक्ति है, इसलिए इनको जितना अवृद्धि किया जाए, मर्दनम गुणवर्धनम, इसको जितना रिपीट किया जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए, तो उसमें रस भाव और ज्ञान तीनों बढ़े। इसलिए हमने दोहराया, शब्दार्थ भी समझ ले, कदाचित कभी पहले कालिंदी तट श्री यमुना जी के किनारे विपिन वृंदावन में मधुवन में संगीत तरलो वेणुनाथ में विभोर नित्य आदि माधुर्य से पूर्ण, मुदा भीरी नारी व्रज गोप सुंदरी के प्रसन्न आनंदित वदन कमल मुखारविंद, मुखारविंद को आस्वाद्य मधुप, आस्वादन करते हुए भ्रमर या प्रेम भरी चितवन से देखते हुए, रमा श्री वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी जी, शंभो कैलाश अधिपति महादेव, ब्रह्मा परमेष्ठी पद अधिकारी श्री ब्रह्मा, अमरपति स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र, गणेश, श्री पार्वती नंदन गणपति जी, अर्चित पदो, जिनके चरण कमलों की अर्चना सेवा करते हैं वे जगन्नाथ, सारे जगत के पालक है, स्वामी जो ईश्वर और नियंता है, नयन पथ गामी, मेरे नयन पथ में पधारिए, मेरे आंखों के रास्ते में आइए, भवतु प्रकट हो, दर्शन दीजिए मैं मुझे। यही विधि है प्रभुपाद जी की, किस श्लोक के शब्दार्थ को बताया जाए, अनुवाद को बताया जाए, इस पर कुछ वैष्णव आचार्य के द्वारा परंपरा से व्याख्या सुनाई। इससे होगा क्या, भक्ति बढ़ेगा, भगवत लीला में मन लगेगा। आइए अनुवाद भी, अनुवाद भी कृपा करके द्वारा ही आप सभी प्रेमीजन जो कभी पहले श्री यमुना जी के किनारे मधुबन में वृंदावन में मधुर मुरली बजाते हुए संगीत नृत्य आदि करते हैं और प्रसन्न होकर व्रज गोप बालाए, जिनके आनंद मुख कमल का भ्रमर की भांति आस्वादन करते हैं, जिनके चरणों की सेवा लक्ष्मी शिवजी ब्रह्मा जी इंद्र और गणपति जी करते हैं, वे जगन्नाथ स्वामी मेरे आंखों के रास्ते में पधारी। कुछ त्रुटि हो तो आप क्षमा कर दीजिए ना, लेकिन दास ने यथामति गुरुजनों से जो सुना है ऐसे ही शब्दार्थ और अनुवाद किया है। हमको ये सौभाग्य मिला है कि हमने जगन्नाथ अष्टकम को परम पूज्य हमारे गुरुदेव विश्वलिंगेश राजा गोविंद महाराज से सुना है, बहुत बार सुना है, इसको इसी तरह सुना है जो मैं बोल रहा हूँ, अनुवाद तात्पर्य कैसा है। अभी इसी साल जुहू में पता है तुम्हारा, फिर उनके शिष्यों से भी सुना हूँ, मैं कई बार भी बोला हूँ इसको गुजरात में, तो जो सुना है समझा है उसी को आप वैष्णव के चरणों में रखने का विनम्र प्रयास है। फिर भी भगवान अनंत है, उनकी लीलाएं भी अनंत है, और उनके विषय में लिखे हुए ये जो संस्कृत के रचना है वे भी अनंत है। लेकिन महाराज हमारे गुरुदेव गरुड़ की तरह है, मैं थोड़ी सी चिड़िया हूँ, तो अपने हिसाब से ही उड़ेंगे ना। हमारा तो गरुड़ है, गगन के विचरण करते हैं भागवत के। ओके, तो बड़ा दर्शन से सुख मिल रहा है आप भक्तों के, तो आप सभी वैष्णव कृष्ण कथा प्रेमी सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान जगन्नाथ के गुणों को गा सकूं। वैसे तो अपने हृदय और वाणी को शुद्ध करने के लिए गुरु आज्ञा से वैष्णव की प्रसन्नता के लिए ये साहस किया जाता है, आचरण और अयोग्यता तो पूरे पूरी है, ना आचरण है ना योग्यता है। लेकिन यही साधना है श्रवण कीर्तन, यही सेवा है श्रवण कीर्तन, और यही पूर्ण भक्ति है श्रवण कीर्तन। इसलिए इस सेवा साधना के भाव से हम लोग करते हैं इस तरह के, कोई गुरु नहीं है ना उपदेश देने आए हैं, बस गुरु कृपा से जो सुना समझा है उसको प्रेम से प्रसादी में बांटने आए हैं आपके चरणों में, और मैं हृदय से ऋणी हूँ, आभारी हूँ इस्कॉन नैरोबी के सभी वैष्णवों का, विशेषकर हमारे रुक्मा प्रभु जी और श्री गौरांग प्रभु जी जो इस कमिटी के रूप में सेवा देते हैं निष्ठापूर्वक, और उनका हमारे प्रति स्नेह है तो कृपा करके इस सेवा में लगाए हैं। इन लोगों को देखते ही सुख मिलता है कि कितना निष्ठा से प्रभुपाद के मिशन में लगे हैं। और इस्कॉन जॉनर ईस्ट अफ्रीका के इसके सुमापति प्रभु जो वर्तमान यहाँ नहीं है, पर मैं जो मीरा रोड में अभी 5-10 दिन पहले उनको मिलके ही आया, उनके चरणों में आज्ञा लेकर ही आया, उनका भी अपना दास पर कुछ अनुग्रह है कि अनुमति देते हैं, तो उपस्थित नहीं है लेकिन मन से मैं उनको प्रणाम करते हुए आप सभी वैष्णव के चरणों में भी पुनः रति प्रणति प्रार्थना रत होते हुए श्री जगन्नाथ अष्टकम कहने का साहस कर रहा हूँ। वैसे आप सभी माने या न माने, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभुपाद जी की इस पावन परंपरा में ये दिव्य भगवत लीला गुण सुनने कहने का अवसर मिलता है। जैसे एक भजन है ना हमारे गौड़ीय धारा में, यदि गौर न हई तो तबे की हई, केमन धरितम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए होते तो राधा रानी की जो व्रज प्रेम भक्ति की महिमा है उसको ये जगत कैसे जानता, सब विधि भक्ति में ही रह जाते। परंपरा होते हुए आचार्य होते हुए भी वृंदावन के रस मधुरिमा का आस्वादन नहीं होता ना, तो ये गौरांग की अहेतु की करुणा वरुणालय सचिन नंदन का ये प्रेम बाढ़ जो उसने बहा दिया जगत को, ऐसे ही भाव में इसी मूड में श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य जो मायापुर धाम में सेवारत है जीवन पर्यंत, अभी शरीर इतना ठीक अवस्था में नहीं तथापि निष्ठा वैसी की वैसी, वैसे आचार्य स्वरूप वर्तमान इस्कॉन के इस होलीनेस जयपता का गोस्वामी महाराज, उन्होंने एक भजन लिखा है पहला, यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो। वो अपने गुरु महाराज के प्रति इसी मूड को लिखते हैं कि अगर नहीं होते तो क्या होता, जीवन बहुत किसे। खूब बढ़िया से बंगला जानते हैं हम, उसके बंगला प्रवचन जो भी सुने हैं तो लिखना जीवन बहुत किसे, हमारा जीवन कैसे बीतता अगर प्रभुपाद नहीं आते पाश्चात्य देश में गुरु आज्ञा पर प्रचार करने, तो ओके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए फिर भी हम तो रही जाते ना। सही भाव लिख रहा है, प्रभुपाद ना हई तो तबे की हई, जीवन कैसे बीतता है तो जानते ही थे सब कैसे बीत रहा है भोगों में, और निदाय और गौ सुंदर ये दोनों प्रकट हुए हैं, पुण्य गौड़ देशे पुष्पवंतो चित्रो नंदो तमो नुदो कविराज महानुभाव चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में लिखते हैं कि सूरज चांद एक साथ प्रकट हो गए गौड़ देश में। लेकिन वही नितार गौरे अपार करुणा, निताई गौरे अपार करुणा की दीते सकल देशे, की दीते सकल देशे। ये निताय और गौर की जो अपार करुणा है वो ये पूरे संसार में सकल देश में कौन देता है, पाश्चात्य देश, तारीने, हम बोलते हैं ना प्रणाम मंत्र में, ये पश्चिम के देशों को तार दिया प्रभुपाद ने गौरवाणी का प्रचार करके। चैतन्य महाप्रभु गौरवाणी मतलब चैतन्य महाप्रभु जी की पवित्र वाणी को विश्व में व्याप्त कर दिया। और सार वस्तु गीता भागवत चैतन्य चरिता, गीता भागवत चैतन्य चरिता प्रेमामृत रस सार, प्रेमामृत रस सार कतना सुंदर सरल करिया, कतना सुंदर सरल करिया की बुझाइते आर, के बुझाइते आर। ये गीता भागवत चैतन्य चरितामृत क्या है? प्रेम रस का समुद्र है, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया? सरल कर दिया। ऐसे आप हिंदी गुजराती में समझ सकते हो, बंगला एकदम गुजराती हिंदी जैसे, कतना सुंदर, कितना सुंदर रूप से सरल करिया, ट्रांसलेशन के साथ अनुवाद के साथ आपके सामने रख दिया। के बुझाई तैयार, अगर ये नहीं होते तो अंग्रेजों का तो क्या हो, अंग्रेजी में कौन है? चलो हिंदी भारत में तो कुछ वो भी जाता, हिंदी गुजराती बंगला आदि संस्कृत का, लेकिन यही मूल रूप में कौन समझाता यथार्थ रूप में एज इट इज। ये करुणा है इस कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, शिल प्रभुपाद की। इसीलिए ऐसे वैष्णव आचार्य के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, तभी करुणा की धारा को हम अपने सर पर ले सकते हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। श्री जगन्नाथ अष्टकम, कुछ विष्णु वैष्णवों का मत है, भारतीय विद्वानों का, कि ये जगन्नाथ अष्टकम श्रीपाद आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित, लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णवों का, विशेषकर इस्कान के भक्तों का भी, और खासकर बड़ा रस तत्व भागवत और अन्य साधु संत समाज में भी पूर्ण आदर सम्मान प्राप्त हमारे गुरुदेव का भी निर्णय है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम उद्गार गौड़ीय वैष्णव, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में पूरी में इसकी रचना की है, और इसके अर्थ अनुवाद को भाव का पकड़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये केवल राधा रानी ही बोल सकती है, राधा हृदय इन्हीं के पास है। फिर भी जो भी हो, अगर शंकराचार्य के द्वारा भी रचित है तो भी कौन है वो, शिवजी है ना, वैष्णवानाम यथाशंभु, वैष्णव के आदि गुरु है, भगवत तत्व रहता है महाजनों में, उनका नाम है भाई, और प्रेमी रसिकों में भी शिवजी का प्रमुख स्थान है, तो उनके द्वारा रचित हो तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है, नहीं होनी चाहिए। तकलीफ तो देखो होनी नहीं चाहिए कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग तकलीफ दूसरे को भी दे देते हैं, खुद तो होते हैं दूसरे, छोटी बात होती है, लेकिन हमारे गौड़ीय आचार्यों और वर्तमान आचार्यों और अन्य भी संप्रदाय मत अनुसार भी 99% लोगों का कहना है भारतीय मनीषियों का कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा रचित जगन्नाथ अष्टकम, फर्स्ट जगन्नाथ अष्टकम में ये बात। सेकंड, जगन्नाथ मतलब द्वारिकाधीश सुदर्शन चक्रधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, लेकिन वो तो है ऐश्वर्य में, जगन्नाथ जी द्वारिकाधीश तो ऐश्वर्य स्वरूप है ना द्वारिका में, और चैतन्य महाप्रभु किस भाव के उपासक है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, वृंदावन भाव के नंद नंदन, है ना, आप कुछ भाव से भी इसकी व्याख्या कुछ बेसिक समझ लो। तो जगन्नाथ जी कृष्ण है जो ऐश्वर्य में थे द्वारिकाधीश, लेकिन ऐश्वरेश्वर सर्वेश्वर श्री द्वारकाधीश कृष्ण जब जगन्नाथ रूप बने ना, तो उसका भाव माधुर्य में प्रमाण कि द्वारकाधीश को जब वृंदावन की लीला सुनाई जा रही थी रोहिणी माता के द्वारा, तब रूप बन गया। तो है कृष्ण द्वारकाधीश, लेकिन भाव कौन सा है? समझाता है ना। और नारद जी ने कहा कि आप क्या नैरोबी वालों के लिए प्रकट हो जाएंगे, सॉरी मतलब पृथ्वी के लिए, कलयुग के लिए प्रकट होते, उसने हम आई गए। तो फिर राजा इंद्रद्युम्न के यहां बड़ी लीला होगी, लेकिन हमें तो जो सेंटेंस है मतलब है, भाव है ऐश्वर्य, लेकिन भाव कौन सा है? वृंदावन है, क्योंकि वृंदावन लीला से ही तो पिघल गए ना प्रभु प्रेम से, उस रस के अनुसार। इसलिए गौड़ीय वैष्णव के भी उपासक है जगन्नाथ, क्योंकि हम माधुर्य में हो ब्रज भाव में, तो भी जगन्नाथ जी ब्रज भाव में। ये उत्तर है, ऐसे समझना चाहिए कुछ। और श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं जगन्नाथ पुरी। पुरी किसे कहते हैं? गेहूं के आटा की चना, कौन सी पानी सेव, कौन सी पुरी? नगरी, शहर, पूर पुरी, नागपुर, अयोध्यापुरी, ऐसे पूर पुरी नगर नगरी को कहते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। लेकिन परम पुरुष जहां शयन और निवास करे उसे पुरी कहते हैं, शास्त्रीय भाषा। परम पुरुष, पुरुष एक ही है श्री कृष्ण, हर सब तो शक्ति है, और वे जहां नित्य निवास करते हो वो है पुरी। इसलिए अयोध्या को कहते हैं पुरी, अवंती, काशी, कांची, सप्त मोक्षदायिका, जिसमें द्वारिका मथुरा भी है, पुरिया है, ये सब जो मोक्ष देती है वहां जाने से, दर्शन से, सेवन से। लेकिन ये पुरी, जगन्नाथ पुरी केवल मोक्ष नहीं देती, प्रेम देती है, भक्ति भी देती है, और विशेषकर कलयुग में। आपने सबने सुना है चार धाम है भारतवर्ष में, तो पूर्व साइड ईस्टर्न साइड इंडिया के कौन सा धाम है? पुरी ओडिशा, जहां श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान। और पश्चिम साइड मतलब द्वारिका, ये भी समुद्र ये भी समुद्र दोनों तरफ, तो वहां श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, ये भी धाम है, चार धाम। और उत्तर में बद्री नारायण तप करते नर नारायण भगवान, और दक्षिण में श्री रंगनाथ रामेश्वर। ऐसे ये दोनों है, जैसे यहां आप यहां देखेंगे ईस्ट में तो जगन्नाथ जी है और लिंगराज महादेव भी है, यहाँ सोमनाथ द्वारकानाथ के साथ, उधर बद्री तो केदार भी, तो यहाँ हमारे रंगनाथ जी है, चेतन महाप्रभु जहाँ गए थे श्री विष्णु, लेकिन रामेश्वर भोले भी क्षेत्र सेवा के रूप में है ही है, प्रेमी भी है, स्वामी सखा सेवक सी पी के, सखा भी है, स्वामी भी है, सेवक भी है, सब संबंध है लीला में शिव का और कृष्ण का मधुर अलग टॉपिक। ओके, लेकिन हम कृष्ण चर्चा कर रहे हैं तो चार धाम की इस तरह हम समझे। अच्छा, चार धाम है, लेकिन अभी कौन सा युग है? कलयुग। तो सतयुग में नर नारायण भगवान प्रकट हुए, तपस्या की है, वो सतयुग का धाम है बद्रीनाथ। त्रेता में राम जी आए, रामेश्वर में गए दक्षिण भारत, तो त्रेता का धाम है। कृष्ण द्वापर में हुए, द्वारिका द्वापर का है, लेकिन जगन्नाथ जी कलयुग में प्रकट हुए। इसलिए चारों धामों में कलयुग के जीवों के लिए करुणा और प्रेम भक्ति देने में नजदीक और भाव वाले कौन है? एक एक बाह्य रूप से कलयुग का धाम है श्री जगन्नाथपुरी। प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में होते हुए भी संन्यास लेकर कहां रहे? पुरी में। क्यों? क्योंकि कृष्ण कलयुग में कहां है? पुरी, जगन्नाथ जी के रूप में कलयुग में कृष्ण यहाँ है, तो मुझे कृष्ण का दर्शन सेवन सानिध्य लेना है ना, इसलिए वही रहे चैतन्य महाप्रभु 18 साल पुरी में निकाले। अब तक संन्यास के बाद जो निज प्रयोजन था राधा प्रकृति प्रणय आलादिनी शक्ति रस्मा, वो राधा प्रेम रस माधुरी का, कृष्ण रस माधुरी का आस्वादन करने की लीला पुरी में हुई गंभीरा। युग धर्म स्थापन हरिनाम प्रचार तो गौण कारण है ना, ये तो किए, लेकिन जो मूल मुख्य कारण है गौर अवतार का निज प्रेम आस्वादन, वो तो पूरी नहीं किया प्रभु ने, गौरांग महाप्रभु जी। तो कलयुग का विशेष औदार्य माधुर्य का भरा हुआ धाम है श्री जगन्नाथ पुरी। इनके कई नाम है, जैसे भू वैकुंठ, ये पृथ्वी का वैकुंठ है, नील नील समुद्र के तट पर नील पर्वत है, अचलयाद्रि कहते हैं संस्कृत में, इसलिए नीलाचल कहते हैं, नीलाचल वाले की मतलब जगन्नाथ की। और इसका नाम एक है पुरुषोत्तम क्षेत्र, जैसे आप बोलते हैं ना श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय, क्योंकि कृष्ण है पुरुषोत्तम, गीता में कहते हैं वो 15:18 मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं और मैं वहां नित्य वास करूं। इसका और एक नाम है शंख क्षेत्र, ये पूरी जैसे वृंदावन कमल आकार में शेप उसका, जैसे गिरिराज मयूर आकार में, ऐसे श्री जगन्नाथपुरी शंख है ना, ठाकुर जी का जो शंख होता है उसका जो बाहर का जो आकृति शंख आकार का है, शंख क्षेत्र कहते हैं। और श्री लक्ष्मी जी भी वहां नित्य निवास करती है, ठाकुर जी जहाँ है वहां लक्ष्मी जी तो है ही है, इसलिए श्री क्षेत्र भी कहते हैं जगन्नाथपुरी को। आप अगर गौरमंडल परिक्रमा करोगे तो खत्म हो, पूरा समाप्त होते ही 2 दिन के बाद तुरंत पूरी 3 दिन की परिक्रमा चलती है 84 पर, हमारे इस्कॉन से ही निकलती है, हजारों लोग होते हैं उधर, तो सब सरल है ना। वृंदावन वाले 1 महीना तपो दिव्य, गौरा 7 दिन, जगन्नाथ तो 3 दिन और प्रसाद तो सरल है, जगन्नाथ जी की परिक्रमा भी और काफी मधुर पवित्र स्थान है चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों के पुरी में। ओके, और ये सब नरसिंह क्षेत्र भी कहते हैं इसे, क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न ने जब यज्ञ किया मंदिर बनाने के बाद ब्रह्मा जी को निवेदन किया, बुलाया, स्कंद पुराण की कथा से आप शायद जगन्नाथ जी की लीला से परिचित होंगे, तो उसमें जब आहुति दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा तो यज्ञ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह और उसके ऊपर 7 फ्रेंड वाले श्रेष्ठ रक्षा के लिए। आज इसलिए आप पूरी मंदिर में गए होंगे तो उसके ठीक पीछे नरसिंह देव का विग्रह, पूरी एंटर होगी जहाँ गरुड़ स्तंभ है, लेकिन वहां से बाहर निकल जाइए और परिक्रमा करके बैग चले जाइए तो मंदिर का जहाँ शिखर देंगे तो वहां नरसिंह देव का विग्रह रखा गया है, क्योंकि वो नरसिंह क्षेत्र है, वरा क्षेत्र भी है, पृथ्वी एक बार थोड़ी हिल गई थी तो भगवान ने वरा ने वहां से दांत फिर बैलेंस किया, ये ब्रह्मांड पुराण में कथा, ये सब पुराणों की कथा से अनुसार जगन्नाथपुरी के कई नाम है, ये दिव्य धाम है जहाँ जगन्नाथ जी दिव्य लीलाएं आज भी करते हैं। और किस भक्तों के साथ करते हैं? हम जैसे कलियुगी भक्तों के साथ, इसलिए ज्यादा करुणा नहीं है श्री जगन्नाथ जी, पर काम एक ही करते हैं महाप्रसाद, कोई झंझट नहीं करते। हमारे भारत के प्रेमी कहते हैं कि श्री कृष्णा रामेश्वर में शयन करते हैं, रंगनाथ है ना, अब गए हो रंगनाथ पद्मनाभ, हम अभी पिछले साल गए थे वहां, इतने बड़े पद्मनाभ है, इतने बड़े ये स्तंभ से लेकर ये इससे भी बड़े है, वहां तक इंस्टॉलमेंट में दर्शन करना पड़ता है, इस गेट में मुख देखो फिर इधर कमर देखो और फिर पैर देखने के लिए फिर उधर जाओ, इंस्टॉलमेंट में दर्शन 3 बोलो पद्मनाभ, वहां सब विष्णु के बड़े बड़े विग्रह है और वो लोग ये लाइट वगैरह भी नहीं करते, प्राचीन परंपरा में दिया तो आप फिर दिया मुंह पर ले जाते हैं बड़े, लेकिन एक बात देखने लायक, ओके, लेकिन शयन करते हैं भगवान, और फिर बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, वहां तो गंगोत्री बहता रहता है, द्वारिका में श्रृंगार आभूषण चकाचक होता है वहां से, और खाना पूरी में, तो फिर हमारे भगत पूछते कि ये व्यक्ति सोता है, श्रृंगार करता है, खाता है, कमाता किधर है, बोले तिरुपति में बिना कमाए तो आदमी खा भी सो नहीं सकता ना, आवक तो होना चाहिए ना, तिरुपति में आप जाइए, हम लोग गए थे इसी साल तिरुपति भी गए थे रामेश्वर से, तो देखे एक हॉल, इससे आधा हॉल है शायद, कांच से इतना दिख रहा था, अंदर कितना पता नहीं, उसमें लाइन में 4 जैसे हम लोग प्रसाद के लिए बैठते हैं ना, 10-10 लोग बैठे थे, सब 500-500 की गिन रहे थे, गिनने के लिए आदमी रखे, बोलो उनको भी गिनने के लिए पगार देते हैं, बहुत कमाई होती है, तो कमाना भी वहां तिरुपति में कमाई चलता, ऐसे भक्त लोग विनोद करते हैं, लेकिन सर लीला है, विग्रह लीला है। ये सब कौन सी लीला है? भगवान जी के अर्च विग्रह की लीला है कलयुग में, क्योंकि प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात विग्रह, प्रतिमा नहीं है केवल, साक्षात भगवान है। और भक्तों के लिए, हम जैसों के लिए बड़े सरल है, इसकी व्याख्या हम करेंगे आगे, समझेंगे आप भक्तों। लेकिन इन सारी बातों को चलते हुए एक बात हमें समझ लेनी है कि जगन्नाथ जी का प्राचीन और पवित्र महोत्सव, जिसे हम कहते हैं श्री रथ यात्रा, जो प्रभुपाद जी का परम प्रिय महोत्सव था, है ना, रथ यात्रा। इवन प्रभुपाद चरित्र में आप पढ़े होंगे, छोटे थे, 5 वर्ष के, तब भी अपने पिता गौर पांडे से जीत करके रथ मांगे, नहीं था सेकंड लेके थोड़ा थोड़ा करके कर लिया रथ। और गलियों में, इस बार 50 साल पूरे हो रहे, कलकत्ता में मनाया गया, हम लोग गए हैं वहां, कलकत्ता कथा थी तो हम गए थे रामनवमी पर, पहले तो ले गए थे प्रभुपाद, जहाँ बचपन गुजारे, जो राधा गोविंद के मंदिर जाते थे अपनी माता के साथ, और जिस गलियों में रथ यात्रा निकले, उनके पिताजी का घर आज तो बिक चुका है वो, लेकिन जहाँ प्रभुपाद जी का जहाँ प्रकट वो घर है, लेकिन गौर मोहंडे जहाँ दुकान चलाते थे वो तो किसी कोई दूसरे लोगों ने ले लिया है, लेकिन है कलकत्ता में। तो हम गए थे उस दर्शन के लिए, तो आप लोग बताते थे वहां पर कि प्रभुपाद जी गलियों में रथ यात्रा निकले तो वहां बंगाली स्त्रियां, उनके लड़के भी इसमें छोटे छोटे बच्चे माता पिता साथ देते थे, तो प्रभुपाद रथ लेकर जाते थे कीर्तन करते हुए, तो हंसी में स्त्रियां पूछती थी, ए भाई कहाँ ले जा रहे रथ? प्रभुपाद कहते थे अमेरिका, लंदन। तो ये सब हंसते थे, छोटा क्या मजाक करे, मजाक नहीं कर रहा, ले गया। आज विश्व का कोई कोना ऐसा देश नहीं जहां प्रभुपाद जी की रथ यात्रा नहीं होती, श्रील प्रभुपाद की पहुंचा दिया ना देश विदेश में, जहां इस्कॉन के सेंटर है, जहां भक्त है वहां रथ यात्रा, अपने इस अफ्रीका में भी 3 निकल गए, जहां मंदिर है वहां रथ यात्रा, दूसरे उत्सव हो तो रथ यात्रा, बड़ा पॉपुलर, बड़ा प्रसिद्ध और सबको आनंद देने वाला उत्सव। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी उत्सव आनंद है, लेकिन 12 बजे तक भूखा तरसा ना, और इसमें तो पहले भी खाओ, पीछे भी खाओ, बाद में भी खाओ, रथ यात्रा में देखो पहले भी प्रसाद, फिर रथ खींचते खींचते भी प्रसाद, पर आने के बाद भी प्रसाद, सबको पसंद पड़ता है ये महोत्सव। उसमें थोड़ी तपस्या है, लेकिन इसमें जगन्नाथ की करुणा है, सत्य सत्य है ना। और जगन्नाथ जी का हमारे विचार क्या, इस्कॉन के प्रथम विग्रह भी क्योंकि साईं प्रसाद जी, आप सुने ही होंगे सर, श्री मालती देवी और श्याम सुंदर प्रभु जी ने किस तरह, हमने वृंदावन में डायरेक्ट सुना था, एक बार बोल रहे थे, रो रही थी मालती देवी माता जी, क्योंकि उसको याद आ रहा था कि कैसे मैं लाई मुक्त कर दी थी ना, म्यूजियम में जाकर उठाया, खेत में रखा, प्रभुपाद के सामने डॉल, प्रभुपाद का ये डॉल नहीं है तो लॉर्ड सब पूरे जगत के बाप को प्रणाम करो, कहां से लाए? हाँ उधर से। वो लोग बोलते मैं पैसा नहीं थी उठाई, क्योंकि अंग्रेज हम लोग को ऐसा बुद्धि था कि जो कांच में बेचारे पैक बंद पड़े उसको मोक्ष दे देना चाहिए, मतलब चोरी करना मोक्ष मांगते थे, मुक्त कर दिया हमने। तो प्रभुपाद ने कहा इसके साथ और 2 थे, बोले हाँ थे ना, ले जाओ, पीले और व्हाइट गुड़िया भी थी, बोले उसको भी लेके आओ, लेकिन मोक्ष मत देना, डॉलर देके लाना, तो उसको भी मोक्ष कर देते। और कारपेंटर थे ही थे उनके प्रभु, प्रभुपाद ने बहुत सहन किया है। श्याम सुंदर प्रभु बता रहे थे कि मैं उस समय इतना भक्त नहीं, शरणागत नहीं था, प्रभुपाद के प्रति आसक्ति थी, क्योंकि उनका तेज, उनकी मधुरता खींच रहा था हम लोगों को, हमको भक्ति विज्ञान तो कोई पता नहीं था इतना, ये जो है तो ऐसा मन में होता था कि ये जो बोले वो करना है स्वाभाविक। कभी कभी सामने वाले वैष्णव की इतनी पवित्रता होती है कि मन खींचा चला जाता है, ये प्योरिटी इज द फोर्स है ना। तो बोले हमको क्या था? लेकिन जो बोले वो करते थे हम लोग। तो प्रभुपाद ने कहा मैं कर सकता हूं, और बलराम जी का विग्रह में बना रहा था, प्रभुपाद एंटर हुए, बिस्तर का पैकेट ऊपर ही पड़ा था बलराम के ऊपर, बता इतनी दशा। प्रभुपाद फिर भी कितना देखो, ये दशा में हम लोग थे, लेकिन सहन किया प्रभुपाद ने, समझाया बच्चे की तरह, हमें डांटा नहीं, लेकिन डांटने में वो भाव था कि फिर भी हम उनके उनको क्या मानते थे, आशीर्वाद मानते। अभी हम लोग WIDC मीटिंग था हमारा इंडिया में, सब तक बड़े प्रभु महाराज थे उपा और गौरा प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद कितना किए है, विग्रह स्थापित करके भी प्रार्थना करते थे कि हे जगन्नाथ, हे बाके बिहार, मैं इन लोगों आपको इन लोगों के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ गलती हो तो आप माफ कर दो, क्योंकि प्रचार इस समय तो करना था ना, सब छह जगह खुलना था, तो प्रभुपाद क्षमा भगवान विग्रह के सामने हाथ जोड़ के रोते रोते कहते थे कि इन लोगों को पता नहीं है कि क्या आपकी स्थिति है और आप कुछ गलती हो तो माफ करना, तो इनके द्वारा हम लोगों के लिए बोले वो मानते थे, रोते रोते कह रहे। और न्यूजीलैंड में जब मंदिर खोला, न्यूजीलैंड में क्या था, वो बोल रहे थे कि कुछ भक्त लोग थे, तीन चार थे, प्रचार करके सोचा कि चलो गौर नीता लाया जाए, इंस्टॉल किया जाए, और जगन्नाथ जी इसकोन के फेमस चीज यही है, क्योंकि इनकी सिर्फ इनको खाली बस गौर नीता है तो खाली कीर्तन करो और इनको भोग लगाओ, दूसरा इतना पंचरात्र विधि शुरुआत तो होता नहीं ना, इसलिए और इनकी जरूरत यही करुणा है, क्योंकि कलयुग में गौर और जगन्नाथ यही तो प्रकट हुए, कलयुग के लोगों के लिए आए हैं दया प्रेम देने, इसलिए यही ठीक है ना। तो क्या किया, वो भक्तों के एक ही रूम था छोटा, सेंटर चालू करना था, तो गौर नीता लाए तो किसी ने कहा छोटे जगन्नाथ भी हो तो दोनों अच्छा रहेगा, लेकिन जगह नहीं था, पेश नहीं था, अल्टर बनाया लकड़े का ऐसे स्टेप स्टेप, और बीच में अल्टर तो जगन्नाथ जी को रखा, और बीच बीच में प्लाई रखा कपड़ा डाल के, उस तरफ गौर नीता है, और एक मोटर रखा घूमते रहे, एडजस्ट किया, बोले दो का रखने का जगह नहीं, और प्रभुपाद आए, प्रभुपाद दर्शन किए उस मंदिर में, तो गौर नीता के प्रणाम किए, उठे तो जगन्नाथ घूम गए, बोले वो क्या है क्या कर रहे हैं लोग, गौर नीता बोले पीछे, बोले क्या है चरका लेके घुमा रहे, लेकिन ऐसे थे कब क्या, लेकिन प्रभुपाद ने अपने पुत्र संगत शिष्य कृष्ण भक्ति, एक साधु के हृदय में देखो कितनी करुणा होती है, सहा है, खुद तप किया है, और बोल रहे थे लोग कि हमारे लिए उसने प्रार्थना की, इसलिए हम गाते हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंद, ये दिया है नाचा। आज पूरे विश्व में महामंत्र महाप्रसाद ये रथ यात्रा इस्कान और उनके भक्तों के द्वारा निकल रही है, ये सारा श्रेय इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का है ना, कि दिया है इसे। और हम लोग आज यहाँ एक छत पर नीचे प्रसाद आनंद कर रहे हैं, ये भी वृंदावन धाम यात्रा कर रहे हैं, या ये भागवत ये रामायण ये गीता का रस ले रहे हैं, इस तरह अगर हम आचार्यों के प्रति अनुगत या कृतज्ञ रहेंगे ना, तो परंपरा की कृपा हमारे हृदय के, तब हम शास्त्रों के सार को समझ पाएंगे, भगवान की लीलाओं को हम हृदयस्थ कर पाएंगे, अन्यथा कृतज्ञता में रहे और ईर्ष्या में रहे दूसरे भक्तों के प्रति, भागवत में प्रथम श्लोक में रिजेक्ट कर दिया इन लोगों को, निर्मत शरणम सतम, किसी अन्य भक्त के प्रति थोड़ा भी ईर्ष्या हो भागवत में उसका एंट्री नहीं है, भले वो श्लोक लड़ने का प्रचार भी कर लेगा लेकिन वो लीला रस तक नहीं पहुंचेगा उस तक। पढ़िए टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, उस पर धर्म प्रोजेक्ट कई तरह पर लिखा है, उसे निर्मत सेकेंड श्लोक भागवत का। लेकिन इस तरह जब सुनते हैं ना हमारे पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों का, तब निकल जाता है हमारे हृदय से ये कचरा, सुनने पर शुद्ध हो जाते थे, हमें ये शोभा नहीं देना, हमारा मूड है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रनुदा, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, राधा कृष्ण प्राण मोरे, वो पढ़ी प्रथम लाइन है सारी ब्रज मंजरी की लीला का, लेकिन कौन पहुंचेगा, दास दासानु ललिता सखी आदि उनकी कृपा होगी आचार्य की होगी, तब नहीं तो दूर रह जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद, मैं याद कर रहा हूँ जगन्नाथ जी की लीला और अष्टकम पर विचार करने से पूर्व, कि श्रील प्रभुपाद भी जगन्नाथपुरी में गए थे रथ यात्रा भी, और प्रेमी थे जगन्नाथ जी के प्रति, प्रभुपाद का अपना विशेष समर्पण भाव रहा है, ये आप प्रभुपाद के चरित्र से समझ सकते हैं, और उन्हीं की कृपा से हमें भी ये लाभ अवसर मिल रहा है। और अब दूसरी बात, आप सब जानते होंगे कि श्री जगन्नाथ जी को दारु ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म मतलब परम तत्व एब्सोल्यूट ट्रुथ, दारु मतलब लकड़ी कास्ट है ना, वुड। लेकिन चैतन्य चरितामृत में स्वयं गौरांग महाप्रभु जी ने कहा है, दारू जल रूपे कृष्णे प्रकट संपत्ति। कृष्ण कलयुग में प्रकट साक्षात है। किस रूप में? दो रूप में, एक दारू रूप में और एक जल रूप में। दारू जल रूपे कृष्णे प्रकट संपत्ति, वो साक्षात इसी रूप में है। क्यों प्रकट है? दर्शने रसनाने ना जीवेर करे मुक्ति। केवल स्नान करने से जल में और उसका दर्शन करने से क्या हो जाएगा? जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस कर्म से, जन्म बंधन से वो फ्री हो जाएगा। तो फिर प्रश्न होगा, भाई जल रूप में कृष्ण प्रकट है और दारू रूप में प्रकट है, और एक जल रूप में वो स्नान करने से मोक्ष दे देता है और जो दारू रूप में वो दर्शन करे, कौन? एड्रेस पर नहीं दिया गया, ये पर इनडायरेक्ट बोला जा रहा है ना, परोक्ष रूप में बात हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। तब फिर उसके दूसरे प्यार में क्लियर करते, दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम। दारू रूप में साक्षात श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान जगतनाथ, और भागीरथी है न जल ब्रह्म सम, और जो ये गंगा जी है भागीरथी, वो विष्णु साक्षात चरणामृत। कथा तो ऐसी है अनंत संहिता में, जो शिव राधा कृष्ण प्रेम बन के जो पसीना द्रवित हो गया, ये भी एक गंगा है। आपने तो वही सुना होगा, चरण कमल से निकलता है, लेकिन प्रेम भी गंगा बन जाता है। ऐसी भी शिव जी के द्वारा अनंत संहिता की सत्य कथा है, हमारे आचार्य के द्वारा लिखी। तो साक्षात है मतलब भगवान लिक्विड फॉर्म में है, जैसे राधा रानी जल के रूप में राधा कुंड में है, यमुना जी जल के रूप में है, हो सकते हैं दिव्य है सब, हमारी मानसिक बुद्धि पर नहीं समझा जाएगा, ज्ञान चक्षु से समझा जाएगा। तो अच्छा, दारू कहते हैं चैतन्य चरितामृत से प्रमाण मिला कि दारू रूप में वो ब्रह्म कृष्ण, लेकिन दारू मतलब लकड़ी के भगवान, लेकिन दास शब्द का अर्थ होता है ददाति। संस्कृत में कोई भी शब्द धातु से बनता है और उसका एक रिजर्व अर्थ होता है, जैसे भक्ति भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा, या उसमें तब प्रत्यय लगते भक्ति बना, जिसका अर्थ है सेवा। इसको प्रभुपाद ने कहा डिवोशनल सर्विस, प्रेम भरी सेवा, क्योंकि सेवा का सर्विस अंग्रेजी ठीक नहीं, इसलिए डिवोशनल लगा दिया कि भाई प्रेम भाव से थोड़ी, नहीं तो सर्विस मतलब रिटर्न कुछ चाहिए, वो अर्थ हो जाता है। प्रभुपाद बड़े सावधान थे कोई भी अनुवाद करने में, लेकिन दान में रू मतलब स्वरूप, अपना प्रकाश, जो स्वरूपगत स्वभाव और आनंद देने वाले हैं वो है दारू। दारू शब्द का अर्थ ऐसे तो गुजराती हिंदी में बड़ा भयंकर होता है, है? कौन सा, हमें कोई बोलेगा दारू कौन सा बोलेगा, देसी विदेशी में बात चली जाती है। इसलिए समझना है हम लोगों को कि शास्त्र के जो शब्द हम बोल रहे हैं और कहाँ है। हम आपको लेना उदाहरण देना चाहते हैं भागवत 11 स्कंद 27वां अध्याय और 12 नंबर श्लोक, जिसमें भगवान उद्धव से कहते हैं कि मैं 8 रूप में प्रकट होता हूं प्रतिमा में, शैली दारुमयी, शैल पत्थर के रूप में, शैल पत्थर मार्बल आदि में भगवान का रूप बनता है विग्रह, दारुमयी मतलब लकड़े के रूप में, लकड़ी लकड़ी की भी विग्रह प्रतिमा बनती है, और लेख्या मतलब पेंट चित्रकाम के, लेप्या लेप्या मतलब जैसे चंदन आदि से लेप से ही मूर्ति बना दी जाती है, पिष्ट करके कोई धातु को लेप से, लोही लोही मतलब धातु, जैसे पंच धातु या लोहे लोहे की, हाँ, या पीतल या चांदी सोना, ये सब ले धातु। कितना हो गया आप गिनिए पहले से, शैली दारुमयी लोही, श्लोक के अनुसार बोलो तो शैली दारुमयी लोही लेप्या मतलब लेप चंदन आदि, लेख्या कितनी हो गई 5, और सैकतिम बालू आदि से, जैसे कात्यायनी की सैकती शब्द वहां आया है, मिट्टी बालू का मेल करके ही विग्रह बना दिया जाता है, सैकत लेप्या लेख्या के सैकती 6, मणिमय मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टधा विधा, आठ प्रकार की विधान है मेरी प्रतिमा का, मनोमयी। कभी कभी संत सदैव हृदयेषु मन में ही बनाते हैं भगवान के विग्रह, स्मरण करते ध्रुव ने किया। और मणिमयी, कभी सोना क्या कहते मणि, ये सब ज्वेल डायमंड से ही विग्रह पूरा, तो इसको मणि से भी भगवान के विग्रह बनते, आठ प्रकार के। और आपके लिए मैं श्लोक लिखा दिया, आप ध्यान से वहां पढ़ ली। शैली दारु मई लोही लेप्या लेख्या च सैकतिम मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टदा विदा। मतलब वहां दारु शब्द आया है, मेरा ये कहने का तात्पर्य। चैतन्य चरितामृत में भी आया है, भागवत जी में भी आया, और इसका सरल हमने अर्थ बताया, दारू मतलब देना, द धातु दधाती अंत में, रू मतलब आनंद प्रकाश। ऐसे रू शब्द के कई अर्थ होते हैं, गुरु में रू शब्द है, हम रू के दायित्व पर सोते हैं केवल, रू का तो बड़ा अपना भी कमाल। गु शब्द अंधकार अस्ति, रू शब्द तद निरोधकम, तो गुरु शब्द की व्याख्या भी हमारे उपनिषदों ने की है। लेकिन रू शब्द का अर्थ यहाँ स्वभाव प्रकाश। लेकिन एक स्कंद पुराण में दारू शब्द की परिभाषा स्वयं व्यास भगवान ने दी है, खंडनात् सर्व दुखानाम अखंडानंद दायत तस्माद् दारू रूपो हि परब्रह्म विधीयते। इस परब्रह्म को दारू क्यों कहते हैं? क्योंकि दा शब्द ददाती धातु से है, मतलब अखंड आनंद ददाती, और दा शब्द का एक अर्थ होता है खंडना, काट देना, तो अखंड आनंद काट देते हैं और सर्व दुख, अखंड आनंद देते हैं और सर्व दुख काट देते, इसलिए इस परब्रह्म कृष्ण तत्व को हमारे वेद क्या कहते हैं? दारू। फिर देशी विदेशी वाली बात नहीं समझ, इस तरह आप सरल भी समझो, संस्कृत से भी समझो, प्रमाण के साथ समझो कहाँ लिखा गया है भगवान ने, भागवत जी में और चैतन्य चरितामृत में। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ जी को दारू ब्रह्म कहते हैं, सरल अर्थ है दारू मतलब लकड़ी। अब यही रुक जाए, जहां गए थे वहां ट्रेक पर, दारू मतलब लकड़ी। अब वैसे जगन्नाथ जी मेरे नयन पथ में आए, काष्ट अवतार लिए इंद्रद्युम्न के, उनकी लीला में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उनका विग्रह तो आप सभी देखे हो, प्रणाम किए हो, दर्शन किए हो। अब हम उस जगन्नाथ जी के विषय में, जो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम भक्ति भाव से अपने हृदय भाव समुद्र को अपने वात लहर से बाहर निकाल रहे हैं, इसका आदर्शन आस्वादन करते हैं। शिखर ने छंद में गाया, कदाचि कालिंदी तटवी बिना संगीत तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद्य मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये शिखरणी छंद बोलते हैं इसको, हमने पहले गाया अलग छंद था, शिखरणी छंद झूमते हुए हाथी की चला चलता है, किसी की रोक टोक नहीं, श्लोक जैसे झूमता हुआ हाथी वन में कैसे चलता है, कदाचित कालिंदी तटवी बिना संगीत तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद्य मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशा चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सव्ये वेणु शिरसि शिखि पीच कटि तटे, ऐसे कल गाएंगे उसको, कल ये छंद में गाएंगे साथ में। लेकिन कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, आइए हम जगन्नाथ अष्टकम में प्रवेश करें। कदाचित शब्द से आप शायद परिचित ही होंगे, कभी कर पहले कदाचित क्या रहते। ये जो अभी समुद्र के तट पर नीलाचल के रूप में नीलमाधव पधार दर्शन दे रहे हैं वे जगन्नाथ, कदाचित कभी पहले कालिंदी तट, कालिंदी मतलब श्री यमुना, हम लोग गाते हैं ना, यमुना तीरा वन चारी, कहाँ वन विचरण कर रहे हैं श्याम सुंदर वाके बिहारी, यमुना तीरा, यमुना तीरा, यमुना मतलब कालिंदी, तट मतलब उसके किनारे, तीरा उसमें भी है ना भजन में, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावर, कालिंदी वहां शब्द आया, यहाँ क्या है कदाचित कालिंदी तट, कालिंदी यमुना जी को कालिंदी क्यों कहते हैं, देखो अब यमुनोत्री हम लोग कई बार गए, याद आता है दृश्य पहाड़ों में, भारत का एक धाम है ना यमुनोत्री, जहां से अपना महारानी प्रकट, उस हिमालय की उस शिखर को, उस शिखर पिक जो टॉप है उसे को कलिंद पर्वत माना जाता है, कलिंद पर्वत की टोच से निकलती है ये धारा, कलिंद की पुत्री मानी जाती है, जैसे पर्वत की पार्वती, जैसे वो शिव पत्नी, ओके, तो कलिंद पर्वत से निकलती है, इसीलिए इस यमुना जी को क्या कहते हैं कालिंदी, एक अर्थ कालिंदी का। दूसरा, कलयुग के कलमश को अपने दर्शन और जल से नष्ट कर दे, ऐसा जिनका प्रभाव है काल इंदी, मतलब जो काल को भी और कलयुग को भी और उनके प्रभाव को भी जो नष्ट कर दे, ऐसा जिसमें पावर है उसे कहते हैं कालिंदी। एक लीला पर करते हैं, ये तत्व पर करते हैं, लीला है कलिंदी पर निकली है इसलिए, और तत्व से अर्थ है कि कलयुग के कलमश को धो देती है, नष्ट कर देती है, जीव को कालातीत बना सकती है जिनके जल का प्रभाव ऐसा है, इसलिए इस धारा को, इस दिव्य जल को कालिंदी कहते हैं। और वर्ण कैसा है इनका, श्याम वर्ण, लोग कहते हैं कि यमुना जी श्याम क्यों है, बोले श्याम नहा के निकल गया ना, कलर छिटका गया कहीं भी जाता है तो अपना रंग देखे जाता है, ये कन्हैया है ही ऐसा बाके बिहारी, बोले यमुना जी काली क्यों हो गए, बोले वो काला निकल गया ना नाके, इसके प्रेम में ये भी हो गई, ऐसे प्रिया है यमुना जी और पत्नी भी बनी है, आपको प्रिया पत्नी में क्या है, वो छोड़ो सब चक्कर, लेकिन यमुना महारानी के रूप में जल में प्रिया वृंदावन में, लेकिन आप शायद पढ़े होंगे महाभारत और भागवत जी में भी है संक्षेप में, महाभारत में विस्तार से कि वो जो मैदावन के महल बना, फिर वो इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई, फिर अर्जुन और कृष्णा यमुना के तट पर थोड़ा विहार करने निकले, कितने बजे, रात्रि 12 बजे, 11-12 बजे दोनों फ्रेंड है भाई, घूम रहे थे, सब कार्यक्रम हो गया, भोज भात हो गया, बोले चक्कर मार के फिर सोते हैं, तब तक तो यमुना जी उस धारा में से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और वरमाला लेकर बस सीधा पहनाना है पत्नी बनने के लिए, अर्जुन कहते कमाल है प्रभु आपको, मित्र कहते जहां भी आपको मिल जाते कालिंदी पत्नी, भगवान ने 8 पटराणियों में इसका नाम है कालिंदी, कदाचित कालिंदी तटवी बिना संगी तरलो कालिंदी। देखिए भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का, इस खासकर वृंदावन की लीलाओं की साक्षी है यमुना जी, हमें तो वृंदावन में हम लोग प्रेमी लोग जब चर्चा करते हैं कि ब्रज में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे राजा सब जानते हैं जगन्नाथ, मतलब कृष्ण है, सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर योगेश्वर, ये सब किसके टाइटल है, बांके बिहारी के, लेकिन ये परमेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर वृंदावन में आते हैं तो क्या बन जाते हैं, उस राजा की 3 महारानियां, एक रजरानी इसमें लौटता है, एक यमुना महारानी और तीसरी राधा रानी, 3 रानी जिसके सामने ये पूरे दुनिया का राजा भी क्या है, वृषभानु की लली के गली को गुलाम, ये तुम्हारा परमेश्वर सर्वेश्वर तुम जो गए रहे वो क्या है, इधर वृषभानु लली जिस गली से गुजर जाए वहां झाड़ू मारेगा, प्रेम के अधीन है प्रभु, जाके जगत अधीन सो प्रभु प्रेम अधीन। ये इनका माधुरता मधुर मादकता है मधुरता है। तो कालिंदी भगवान कृष्ण की लीलाओं की साक्षी है यमुना जी। और एक बार और हम सुने कालिंदी के पर यमुना पर कि भगवान कृष्ण यमुना जी को डायरेक्ट पानी पीते, जैसे गाय पानी पीती है ना, ऐसे कृष्ण भी ऐसे होके सीधा ही, मतलब भगवान के लाल लाल अधरों का स्पर्श यमुना जी को डायरेक्ट मिला। और फिर इतने से संतोष नहीं तो ऐसे ही पीने जा रहे तो पीछे से मधुमंगा धक्का देता है पूरा अंदर। तो अभी पान नहीं हो गया, क्या हो गया, स्नान भी हो गया। तो यमुना जी मानो अभी तो जल के रूप में, लेकिन अंदर से कहती होगी मधुमंगल को थैंक यू यार, ये तुमको डाल ही दिया, अभी तो थोड़ा ही लाभ मिलता लेकिन पूरा ही दे दिया आपने। ये प्रभाव है यमुना जी, रस की बात है, लीला है, क्योंकि सभी लीला वही हुई, रास भी वही हुआ, गोचारण भी यमुना तीरा ही होता था और भगवान यमुना में नहाते थे पीते थे, गैया चरती थी। तो यमुना जी को जो सौभाग्य है वो किसी और को नहीं है, प्रिया है भगवान की। और उस तट पर ये रहते हैं, अभी समुद्र तट पर आ गए हैं कलयुग में, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के है, कल आएगा। आज भी एक संकेत कल क्लियर बोलेंगे दूसरे श्लोक में चेतन महाप्रभु, ये कालिंदी तट निवासी। और इसका एक नाम है यमुना, जैसे यहाँ कालिंदी है लेकिन पर्याय हम समझते हैं कालिंदी मतलब यमुना। यमुना किसकी बहन है, ये यमराज की, मतलब जहां जहां बहे यमुना तहां तहां यमुना, जहां यमुना जी है वहां यमराज। आप सबने वैष्णव गीत हमारा देखा हो ना, इसकन गौड़िया, तो उसमें यमुना अष्टकम है, उसका प्रथम श्लोक है भ्रातृ कालांक तस्य पतती भी विपत्ति हारिणी। इसका एक बड़ा खतरनाक भाई है यमराज, और वो जिस पर दृष्टि डालता है, जिसको पकड़ता है ना, उसका ट्रीटमेंट बढ़िया से करता है। लेकिन कोई यमुना जी को याद करे, उनको स्नान करे, उनको पान करे, तो वो भाई जी छोड़ देंगे उसको। बोले स्नान पान करने की बात छोड़ो, प्रेक्षयाति पापिनो अपि पाप सिंधु धारिणी। कितना ही बड़ा पापी हो, पाप का समुद्र हो, लेकिन केवल यमुना जी की लहरों को देखेगा ना, कहीं वृंदावन चला जाए परिक्रमा में, ठंडी है आलसी है, स्नान नहीं करेगा लेकिन देखेगा, स्नान करे तो छोड़िए, लेकिन केवल देखेगा, प्रेक्षयाति पापिनो अपि पाप धारिणी, उसके पाप को यमुना जी खींच लेगी। नीरांबु शीरधी, और इसका जो शीतल मधुर जल है, अगर वो कहीं पी लिया भाव सिंधु बघाए, तब तो क्या प्रेम भक्ति में मां पुनातु सर्वदा अरविंदु बंधु नंदिनी। क्या मधुर यमुनाष्टकम है, आप पढ़िएगा कभी, मां पुनातु मुझे पवित्र कर दीजिए सर्वदा, आप तो सर्व, क्योंकि अरविंद बंधु सूर्य का क्या नाम है, कमल को खिलाता है ना, अरविंद का बंधु तस्य नंदिनी, किसकी पुत्री है ये, सूर्य पुत्री, शरीर से नदी रूप में कालिंद से निकली है लेकिन शारीरिक रूप में सूर्य पुत्री है श्री कालिंदी। तो हे अरविंद बंधु नंदिनी माम पुनात मुझे पवित्र करिए करो, ये यमुना जी के चरणों में। और एक बात भागवत जी में आप सुनिए, कृष्ण जन्म प्रकरण दशम स्कंध तीसरा अध्याय 50 नंबर श्लोक, सुखदेव जी कहते हैं कि ताम बाहे वसुदेव आगते, वसुदेव कन्हैया जी को मस्तक पर रखकर जब यमुना तट पर पहुंचे रात्रि में 12 बजे, जब कृष्ण जन्म गोकुल जा रहे थे छोड़ने के लिए, मघो निवर्षंत सकृत्य मानुजा, मघोनी मेघ लोग वर्षंत बरसने लगे, और सकृत यमानुजा तो जो यम की अनुजा मतलब यमराज की छोटी बहन, अनु मतलब पीछे जा मतलब जन्म लेना, अनुज कहते ना लेडीज स्त्री को अनुजा, यमा अनुजा, सुखदेव जी वहां शब्द देते हैं कि यमा अनुजा जब देखे कि तो वो तो जानते हैं कि इसमें कौन है हमारे वे, लेकिन प्रॉब्लम है पप्पा साथ में है ये भी, इसलिए यमुना जी, लेकिन यमुना जी आप सभी जानते क्या हो गई, सुखदेव जी कहते गंभीर तो यो जवोर में फैनिला, इतनी भयानक हो गई यमुना जी उसमें, क्योंकि ऐसे बाढ़ वर्षा भी हो रहा था तो लहरें उड़ रही थी बड़ी 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 लहरें भयानक, उसमें बड़े बड़े प्रबल नदी में होते ना भंवर पड़ते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल, ऐसे उठने लगे। तो मानो ऐसा क्यों हो गया यमुना जी को? हमारे आचार्यों ने लिखा है, गुरुदेव हमारे व्याख्या करते हैं हरेश्वरी की टीका को, बोले यमुना जी बता रही है कि तुम सूर वंश में आए ना शौरी, तो मैं सॉरी नहीं कहूंगी, तुम शौरी तो मैं भी शौरी, नहीं मैं भी हूं, मैं सूर्य की पुत्री हूं, मतलब मैं भी क्षत्रियानी हूं, तुम क्षत्रिय हो तो मैं भी, और तुम पावर में हो तो देखो हमारा भी पावर, ओछा नहीं तुम तो, मतलब तुम्हारे लायक हूं। इसलिए यमुना जी बता रही कि क्षत्रिय तो क्षत्रिय से ही शादी करेंगे ना, आगे बनकर इनकी पत्नी बनना है ना हमको कैलेंडर के रूप में, तो इसको बताना पड़ेगा कि मैं आपके योग्य। तो अच्छा, तो बता रही तो मार्कंद दो सिंधु रिवस्त्रीय प्रदे, तो अंतिम श्लोक अंतिम लाइन में वहां लिखा 10:50 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कृष्ण को लेकर वसुदेव गए, तो यमुना यमानुजा भयानक हो गई, लेकिन जैसे वसुदेव जी एकदम यमुना के पास पहुंच गए तो मार्गम ददो सिंधु रिवस्त्रीय प्रदे, जैसे राम जी गए और समुद्र ने मार्ग दे दिया, ऐसे यमुना जी दो भाग में पहाड़ की तरह जल स्टैचू हो गए, स्टॉप हो गए, और जान मात्रम जलम विष्णु पुराण में लिखा, वह जल कितना हो गया वसुदेव जी के ये घुटने तक, जानो मात्र। तो फिर क्यों भाई, पहले प्रभाव दिखा रही थी अब शांत हो गई। यमुना जी ने सोचा कि प्रभाव कृष्ण को तो दिखा दिया कि पत्नी के लायक हो, लेकिन ससुर जी जब बेविशाल एंगेजमेंट का टाइम होगा तो बोलेंगे वो तो आंकड़ा से था, इसलिए स्वभाव पता तो ठीक रहो, चरणों पर ससुर के चरणों में अभी से पड़ जाओ, मतलब ये भाव है हरिश्वरी जी का कि यमुना जी ने सोचा कि इनकी पत्नी बनना है तो पसंद तो कौन करेंगे, पिता हाँ करेगा था तो पिता जी देखेंगे याद आएगा कि कितनी खतरनाक थी ये घर में आ जाएगी तो, इसलिए इसको समझाना कि नहीं मैं खतरनाक नहीं हूं, मैं सरला हूं, इसलिए चरण में प्रणाम। लेकिन जैसे वसुदेव जी एंटर हुए तो फिर क्योंकि एक मनोकामना रह गई थी अपने प्रभु के चरणों को, ये भी क्या लीला है, उसमें जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन याद आता है वो भी बड़े बड़े भाव दिए गए कि चरण क्यों छुए गए, कैसे छूना चाहिए, और भूलती नहीं कृष्ण लीला को छोड़ो, चैतन्य महाप्रभु वही साक्षात कृष्ण कलयुग में जब पहुंचे ना यमुना के तट पर वृंदावन परिक्रमा में, आसिया छे वृंदावने नाचे हरि हरि बोले, जब गौरांग यमुना के तट पर आए तो ये तो पहचान ली क्या मेरा पति, अभी काला है लेकिन गोरा बन गया है, लेकिन है वही ओखी जाए प्रिया है ना, यमुना उठी लो ऐसे, यमुना जी अपने लहरों से उठ गए, चरण धोया ढूल ढूल गोरा चांद हरि गुण गा, गौरांग गुण गा रहे, लेकिन यमुना जी अपने गौरांग चरण छूने के लिए बाढ़ में आ गई, गौरांग के चरणों को छू ही लिए, पहचान गई ना भले शाम है अभी गौर सुंदर बन के आए हैं लेकिन है तो हमारे ही, यमुना जी की लहरें ही भात माने जाते हैं ना, यही गाया वल्लभाचार्य ने, गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुर, यमुना जी का सलिल जल भी मधुर है, उसमें खिलने वाले कमल भी मधुर है, यमुना जी भी मधुर है, और बीची मतलब लहरे वेव्स, इसको बीची कहते हैं, यमुना मधुरा यमुना जी की लहरे बोले श्री राधा राधा, ये भी प्रेमी कदाचित कालिंदी तट में पीना, यही हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया, अबरे कालिंदी नीरे राजा हंस के ली करे ताहे शोभे कनक कमल वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनो, दिव्य वृंदावन, नरोत्तम दास ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में यही पदों को गाया है, जिसमें यमुना जी में खिले है कमल, बड़े सुंदर कमल खिले रहते थे और हमारे आचार्य ने बहुत रस लिया है भाई कौड़ियों में। चक्रवर्ती बात लिखते हैं कि कमल मतलब क्या है, साधारण कमल थोड़ी, गोपी नहा रही है, गोपी का मुख ही कमल है, कृष्ण को देखते ही खिल जाते हैं, यही बात आगे आएगी इसी इसी श्लोक में। मुदा अभीरी नारी वदन कमल, उस अभीरी नारियों के मुख जैसे कमल खिल गए, प्रसन्न, मुदा मतलब प्रसन्न, आनंद में आए। लेकिन हम तो अभी कालिंदी तट पर है, अभी गोपियां कहाँ आई है, अभी तो श्याम सुंदर भी नहीं है, अभी तो केवल यमुना जी बह रही है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, विपिन नेक्स्ट शब्द क्या है, विपिन, विपिन मतलब वन, वृंदावन, कालिंदी के तट पर जो वन है वो वन, तो कौन सा वन है यमुना के तट पर, वृंदावन मधुवन। देखिए उस लाइन को फिर याद करें, कालिंदी जमुना जय जय महावन, फिर क्या है, केशी घाट वंशी वट द्वादश कान, यहाँ सब लीला कैल श्री नंद नंद, द्वादश मतलब 12 फॉरेस्ट कानन है ना, तो श्री यमुना जी उत्तर से दक्षिणावर्त में बहती है, ऊपर से निकलती ना उत्तर से, तो श्री धाम वृंदावन जो है ब्रज 84 कोस में, यमुना जी के पूर्व साइड ईस्टर्न साइड में 5 वन है, द्वादश में से 5 पूर्व साइड और 7 पश्चिम साइड वेस्टर्न, तो 5 वन यमुना जी के पूर्व में, पहला है गोकुल महावन जिसको क्या कहते हैं महा, दूसरा है लोहवन, अब ब्रजमंडल करेंगे ना सब आएगा, लोहवन यह जरासंघ आता था ना मामा का ससुर लड़ने के लिए, वही आता था, ये मथुरा की बॉर्डर मानी जाती है, लोहवन में सैन्य लेकर आता था, कृष्ण मार देते थे, बलराम जी को कहते थे मार दो इसको भी, बोले नहीं इसको छोड़ दो, मामा का ससुर है बेचारा, फिर इकट्ठा करके आएगा तो फिर मारेंगे, तो वो लोहवन में होता था। तो पहला पूर्व साइड में पहला महावन, दूसरा लोहवन, तीसरा पांडिरवन विवाह कराया ब्रह्मा ने, बट है वहां पर भद्रवन, और पांचवा बैलवन जो एकदम वृंदावन के सामने देखता है, जहां लक्ष्मी जी ने श्रीवन भी कहते, और अब इस तरफ आ जाइए यमुना के पश्चिम साइड मधुवन, पहला ही कौन सा वन है, ध्रुवतपुर, फिर तालवन, फिर कुमुदवन, फिर बहुलावन, ये बहुलाष्ट में आता ना राधा गाय वही वो लीला वही होती, बहुलावन, फिर वृंदावन, गोवर्धन वृंदावन में आ जाता है, गोवर्धन कहाँ आता है, वृंदावन में, 12 वनों में वृंदावन में, और फिर खदीरवन बरसाना के पास है, जहाँ पर पकासुर का भगवान ने वध किया था, जहाँ पर हमारे लोकनाथ गोस्वामी का भजन कुटी, नरोत्तम दास वहीं सेवा किए थे शिष्य बनने से पूर्व, जो चरित्र है ना नरोत्तम जी का, वो वहाँ के लिए, और फिर सातवा कामवन, बोलिए 12 नाम, पहले से लेके महावन, लोहवन, पांडिरवन, भद्रवन और बैलवन तथा श्रीवन लक्ष्मी जी का वन, और इस तरफ में मधुवन, तालवन, तालवन में क्या हुआ था, गधे को मारा था धेनु का असुर को बलराम, मधुवन में तो तालवन, मधुवन, तालवन, फिर कुमुदवन, महाराजा रानी कुमुद पुष्प होते थे चुनने के लिए आते थे रास्ते, कुमुदवन, बहुलावन, वृंदावन, खदीरवन और कामवन, कृषि घाट वंशी वट द्वादश कान, यहाँ सब लीला कैल श्री नंद नंद। तो विपिन कालिंदी तट और वृंदावन क्या करते थे भगवान, विपिन बिहारी है ही ना, गाते लूट लूट ददी माखन खायो, कबहु मधुवन रास रचायो, वृंदा विपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम, वृंदा विपिन वृंदावन की वनों में विचरण करते हैं गैया को लेकर, मूल लीला गोचारण है लेकिन इसके अंदर ही सब लीला है, मेन गोचर और इसके अंदर फिर रास और फिर असुर मार सब इसके अंदर मेन गोचार, लेकिन कहाँ करते थे, वृंदावन, और ये वृंदावन की भी अपनी विशेषता है विपिन, उसमें क्या है संगीत, संगीत क्या, कृष्ण ऐसे तो आप सभी सुने होंगे एवरी वर्ड्स इज ए सॉन्ग, वहां तो वृंदावन के वर्णन क्या है, कथा गान, Every step is a dance. वहाँ चलना ही नित्य है ना, वहाँ तो एक कदम भी कृष्ण कथा गानम नाट्यम गमन भी वंशी प्रिय सखी, तो वंशी से जो भगवान नाद करते थे मधुर कलरव, यही गीत है, भगवान वंशी से गीत गाते थे, इसलिए भागवत में है वेणु गीत। और इसके पहले सुखदेव जी ने लिखा बरहा पीड़ नटवर वपु कर्ण यो कर्णिकार विप्रद वास कनक कपिशं वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणु, वेणु के रंध्र में अदर सुदया होठों के रस पूरयन गोप वृंदे, गोप सखाओ साथ वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति सखा लोग गाते थे वृंदा। यही श्लोक को सुनकर तो सुखदेव जी समाधि छोड़ के भागे ना, भगवान के रूप माधुरी को सुनकर। तो गीत कीर्ति, भगवान वेणु से जो गीत छोड़ते थे पूरे ब्रज 84 कोस में उस कमाल हो जाता। इति वेणु रणन राजन, सुखदेव जी वेणु गीत के पहले ही छोड़ते, इस तरह वेणु रव जब हुआ राजन सभी गोपिया भूल गई अपनी सुध को, लिखा है। और शरद ग्रास में भी यही वर्णन है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा भागवत 10:29। और ये जो बरहा पीडम है 10:21-5, भगवान यहाँ इस श्लोक में ये बताया गया कि श्री कृष्ण वेणु के द्वारा गीत गाते हैं और सब ब्रज गोपियों को प्रेम से स्मरण करते हैं, नाम बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत, और संगीत में तरल हो, जैसे तरल मतलब जल जैसे द्रवित होता है तरल, ऐसे भगवान कृष्ण वेणु गात बजाते हुए नृत्य भी करते हैं, नाच भी है और गान भी है, संगीत है डांस भी है। तो संगीत तरल हो, और इसको देख के क्या होता था, मुदा भीरी नारी वदन कमलास्वात्य मधुपर। जो वृंदावन की ब्रज गोपियां हैं वो भगवान श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल रहती थी, उनके मुख मुरझाए हुए कमल फूल की तरह हो जाते थे, जिसका आस्वादन हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने किया है अन्य रचना शिक्षा स्कंध में, युगायतम निमिषेण। आपके विरह में एक एक क्षण कैसे जा रहा है, युग जय चक्षुषा प्रावृषायितम, प्रावृष मतलब वर्षा ऋतु, प्रावृष कहते हैं वर्षा ऋतु, हमारी आंखों से नेत्र में अविरत अश्रुधारा बह रही है। भक्तो सत्य बात है, प्रेम हो वहां अश्रु है, तो ये तो बड़ा ऊंचा प्रेम है, दिव्य प्रेम है गोपी और कृष्ण का, तो नेचुरल भौतिक स्तर पर नहीं लेना चाहिए, प्रेमाश्रु बह जाते थे स्मरण होते ही। देखिए जब आपकी आंखें दर्द का दरबार भरती है तो समझना चाहिए कि अंदर में किसी की याद का अभिषेक हो रहा है। कोई नहीं याद अंदर में होती है ना, तेरे अभिषेक बारो चरण अमृत कहते निकला, बाकी मेरे का अभिषेक करते हो व्यवस्था करते हो ना कि कहां से निकलेगा ये प्रेम अभिषेक। जब प्रेमी के हृदय में होता है अपने प्रियतम के प्रति तो वो नेत्र द्वार से बहता है, जो गंगा जल से भी पवित्र हो जाता है। नयनम कब होगा महाप्रभु, तो इसके लिए प्रार्थना आगे किस लोक में की है साधना भाव में, लेकिन सिद्ध अवस्था में तो युगायतम निमिषेण चक्षुष नहीं देवराज दर्शन तो शून्य एकदम जगत सर्वम गोविंद विरहने में, ये राधा रानी का हृदय था कृष्ण के विरह में। तो गोपियां भगवान श्याम सुंदर को दिखे बिना सुने बिना इस तरह का भाव था, लेकिन जैसे ही गीत बजता था वेणु से मुदा, मुदा मतलब प्रसन्न हो जाती थी, कौन आभीरी नारी। रूप गोस्वामी ने कृष्ण गणोदेश दीपिका में लिखा है कि आभीर एक जाति है जो गाय और बकरी का पालन पोषण करते हैं, इस पर इस जाति को आभीर जाति कहते हैं, और तस्य कन्या अर्थात वृंदावन की ब्रज गोपिका है, ब्रज सुंदरिया आभीरी नारी, वो क्या हो जाती है मुदा प्रसन्न हो जाती है। और क्या किससे, जो वेणु संगीत वो जो बजाया जगन्नाथ वहां पर उससे, वदना कमला उसका मुख कमल की तरह खिल जाता था, और जैसे ही कृष्ण के सामने आ जाती थी या कृष्ण के सामने आ जाते थे तो कृष्ण क्या करते थे, आस्वाद्य मधुभव, कृष्ण भ्रमर बन जाते, गोपी मुख कमल है और कृष्ण के नयन भ्रमर, और गोपी के मुख कमल को राधा रानी के मुख कमल को पीते थे श्री कृष्ण, भ्रमर बनकर, जैसे भ्रमर पुष्प का सार रस मधु लेता है, ऐसे ही गोपी प्रेम मुख कमल का जो माधुर्य है वो कृष्णा अपने नयनों कमल नयनों से लेते हैं। बड़ी ऊंची बात लिखी जा रही है। देखो अब माधुर्य है दो, अब अंतिम लाइन जो इस श्लोक की है, दोनों लाइन वो ऐश्वर्य में है। पहली दो लाइन वृंदावन के रस मधुर्य का वर्णन है, और अब जो वर्णन आएगा रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति, उसमें भगवान की भगवत्ता ऐश्वर्य जगन्नाथ, तो माधुर्य और ऐश्वर्य का मिश्रण है। लेकिन श्लोक को समझने से आपको रस आएगा। देखिए मुदा भीरी नारी, कृष्ण के वेणु संगीत मुख को देखकर गोपियों के मुख कमल की तरह खिल जाते थे। तो कृष्ण क्या हो जाते थे? भ्रमर, जैसे कमल को भ्रमर रस लेता है, कुछ नहीं देखता आगे पीछे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही देखते थे जगन्नाथ जी को। नेत्रोत्सव का वर्णन पढ़िए, मध्य लीला 12वां अध्याय 117 नंबर श्लोक से लेकर, कैसे देखते थे, मर्यादा करे न लंघन। कविराज ने लिखा कि जब नेत्रोत्सव आया चैतन्य महाप्रभु क्या किए, वो कभी गरुड़ स्तंभ को छोड़ते नहीं थे, लेकिन मर्यादा का तोड़ दिए, घुस गए उधर अंदर इतना, और ऐसे पी रहे थे जैसे नेत्र भृंग कमल, जैसे कमल को कोई भमरा अंदर चौंस लगा देता है फिर वो कमल बन जाए मर जाए लेकिन वो छोड़ता, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के नेत्र राधा रानी के कृष्ण कमल को देखने में क्या हो गए, भ्रमर बन गए। हमने लिखा है यहाँ टाइम नहीं जाने का, चैतन्य जनता एज इट इज कविराज के शब्दों को कि कैसे देते, लेकिन यहां वर्णन उल्टा है। कृष्ण राधा रानी कृष्ण को देख रही है, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी, कृष्णा कृष्णा है उसके कमल, यहां क्या वर्णन है, गोपियों के मुख कमल को ये जगन्नाथ भ्रमर बन के देख रहे हैं। तो ये भी वर्णन वहां है, क्योंकि जितनी आसक्ति कृष्ण को राधा को देखने की है गोपियों, इतनी ही गोपियों, और इसका वर्णन कविराज ने किया है वहां पर। यहाँ पर जो हमने लिखा है कि गौर यदि आगे जाए, चैतन्य महाप्रभु आगे ना जाए तो रथ है स्थिर, जगन्नाथ जी उसका रथ वहीं पर स्टॉप कर देते थे, और गौर यदि आगे चले रथ चले धीरे धीरे, अगर चैतन्य महाप्रभु आगे है तो फिर जगन्नाथ जी चलते थे। और उसकी टीका पड़ी हमारे प्रभुपाद के गुरु महाराज ने, टीका तात्पर्य वहां कि ये तो राधा रानी है ना चैतन्य महाप्रभु, तो वो नाचते थे तो जगन्नाथ जी खुश होते देखते, लेकिन वो कभी पीछे की पार्टी में चले जाए तो रथ जाम, और ये लोग ट्राई कर रहे हाथी बुलाओ थका मारो ये करो, हिल ही नहीं रहे, पसीना निकल गया, राजा ने हाथियों को बुलाया वहां लिखा है चैतन्य चरितामृत में, और इतना धक्का कि जाम हो गया लेकिन रथ हिल ही नहीं रहा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते रथ के पास आकर थोड़ा सा सर लगाए, कोई नहीं छू रहा है, जगन्नाथ जी ऐसे चलने लगे, चक्का जाम हो गया था, फ्री हो गया रथ का। तो मतलब ये देखने को तरसते हैं, ये भी देखना, और इसका प्रमाण है गीत गोविंद, जयदेव जी ने मंगलाचरण में लिखा, आपके वैष्णव गीत में बुक है उसमें है श्री कमला कुछ मंडल जो है ना जय जय देव हरे, उसमें लिखा है सातवीं लाइन, अभिनव चल धर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जल धर सुन मंदर पकड़े है कृष्ण, तो राधा रानी श्री श्री मतलब राधा रानी श्री जी मुख चंद्र चको, लेकिन कृष्ण का राधा रानी का मुख ही श्री है और कृष्ण के नेत्र उसको देख रहे चकोर, दोनों व्याख्या है वहां श्री मुख चंद्र चकोर। तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्यारी गोपिया सिरमौर श्री राधा उसके खिले हुए मुख कमल को भ्रमर की तरह आस्वादन करते थे, और वे अभी क्या हो रहे हैं, ये जो ये वृंदावन में इस तरह की लीला करते थे अभी क्या कर रहे हैं कलयुग में, रमा शंभु ब्रह्मा मारपति गणेश अर्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। एक प्रश्न किया जाए कि सब स्त्रियों को ऐसे देखता है, इस तरह का तो काम ठीक नहीं है, नीति के अनुसार विधि के अनुसार आधंधो हरणों के बिना, ये जो बात बता रहे हो आप पर इस तरह की प्रश्न किया जाए कि ये ठीक नहीं है, अब इसका उत्तर है कि अगर ये कृष्ण का दिव्य और पवित्र लीला नहीं होता तो उसकी ही पत्नी लक्ष्मी उसकी सेवा, क्योंकि कोई पत्नी ये नहीं चाहती कि अब उसका पति किसी और पत्नी, तो रो ना तो प्रसन्न होगी, ना सेवा करेगी, ना छोड़ के जाएगी, तलाक तलाक तलाक। ये क्यों होता है? इसी प्रॉब्लम से होता है ना। आप मटेरियलिस्टिक थोड़े आ जाओ नीचे तो समझोगे इस बात को। और ये तो हमारी हिंदी संस्कृति में शब्द नहीं, ये तो मुगल लोग लाए। जब इस तरह का संबंध होता, अगर कृष्ण का इस तरह का संबंध कुछ भी निम्न स्तर का होता तो स्वयं लक्ष्मी जी रमा क्यों उनके चरणों की सेवा करे। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमान, अर्थात ये दिव्य है, ये पवित्र है, इसमें लंपटता दिखती है लेकिन है, इसमें प्रेम माधुर्य की पराकाष्ठा है, जिसको शिव ब्रह्मा सुखदेव जैसे योगी जानते हैं, जो इस देहांतर से बड़े ऊपर उठ चुके हैं। देखिए ऐश्वर्य, ये जगन्नाथ कौन है? रमा लक्ष्मी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए त्रिभुवन के अन्न दानव सुर सब तरसते हैं, लेकिन सबको छोड़कर जिसके गले में वरमाला डाली है, और डाली है तो भगवान ने हृदय में स्थान दिया, लेकिन ये कहां पड़ी रहती है? चरणों। राधा रानी इसको गुरु मानती है। असली सेवा पादरता मध्य अंतिम लीला 20वां अध्याय स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि राधा रानी भाव में, राधा भाव में गौरानी तो सेवा करती लक्ष्मी ठकुरानी, मुझे सीखना है उनसे कि मैं भी मेरे प्राणनाथ कृष्ण की ऐसी सेवा करती। बड़ा सुंदर वर्णन है वहां, तो लक्ष्मी सेवा करते हैं। शंभु देवों के देव माने जाते हैं, सारे देवता उनकी शरण जाते हैं, जो हला कालकूट को पी गए, नीलकंठ लावण्य निधि, एक त्रिनेत्र खोले पुला प्रलय जमा दे, महामृत्युंजय के अधिकारी, लेकिन क्या करते हैं? सदेव देवो गिरीश चंद्र मौली दधार मूर्धना परयाच भक्त्या, भागवत 8:18। अब पढ़िए, जब वामन देव गए ना और बलि ने चरण धोया, तब सुखदेव जी ने लिखा कि ये कृष्ण वामन कौन है जिनके चरणों के जल को देव देव गिरीश चंद्रमौली शिव जी भी सर पर चढ़ाते हैं, और प्रेम से परयाच भक्त्या, भगवान शिव इतना प्रेम करते कृष्ण को कि उनके चरणों को भी गंगा को माथे रखते हैं, स्तुति करते हैं, क्यों गाते हैं। और ब्रह्मा ईश्वर परम कृष्ण, ये तो फेमस है ब्रह्मा जी का। और भागवत में भी 14वें अध्याय में जब ब्रह्म भवन लीला पहला श्लोक नवमिट्ठे प्रभु पुसात टिम्बराय गुज्जावतन से पर चार चार मुखों से चक्कर मार मार के कर रहे थे, भगवान ने कहा बंद करो, बात ध्यान दो, लीला करना काम टपक पड़े थमक पड़े नहीं, प्रभु मां रो रहे ब्रह्मा जी। बड़ी लंबी स्तुति है। रमा शंभो अमरपति, अमरावती के राजा देवराज इंद्र, इनका तो पूछो ही मत, बहुत स्तुति है, जब भी होते व्रत रहते पहुंच ही जाते, गोवर्धन के समय भी पहुंच गया। और ये सबको होलसेल में हम बात करें, भगवान कृष्ण ये जगन्नाथ देवकी के उदर में आए ना, जय की जन निवास हो देव की जन्म वादो, तब ये सब पहुंच गए थे, ब्रह्मा शिव इंद्र, और भगवान तो अभी गर्भ में थे, और गर्भ स्तुति है ना भागवत में देवता के द्वारा, सत्य व्रतम सत्य परम सत्य, और पूरा विश्व जिनके प्रथम पूजा करता है, लेकिन वो गणपति गणेश अपी गणेश जी भी, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं यत् पाद पल्लव युग विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये से गणाधिराज विज्ञान विहंत मलनस्य जगत्रयस्य गोविंद माधु पुरुषम। अब इससे बड़ा कोई दिखता है आपको? लक्ष्मी से, शिव जी से, ब्रह्मा से, इंद्र से, गणेश से, और ये सब क्या करे? अर्चित पदो, ये जगन्नाथ जी के चरण कमल की अर्चना सेवा पूजा करते हैं। वे जगन्नाथ जो सारे जगत के पालक है, नाथ है, नियंता स्वामी मतलब कंट्रोलर है, वे जगन्नाथ मेरे नयन पथ में, मेरे आंखों के रास्ते में आए, क्योंकि यही आंखों का फल है। गोपियों ने वेणुगीत का प्रथम तो यही है, अक्षणो फलम त्वा दर्शनम एव, आंखों का फल है कि नंद नंदन का दर्शन हो जाए। और आप हृदय से प्रार्थना करोगे ना इस तरह की, जो चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं प्रथम श्लोक में, हे जगन्नाथ मेरे नयन पथ में आ रही, भले आप में शक्ति न हो, बुद्धि भी न हो, शरीर में भी क्षमता, लेकिन प्रार्थना हृदय से हो तो ये जगन्नाथ बोलते प्रमाण, कोई भी बात प्रमाण से बननी चाहिए, है ना? नहीं थे समर्थ गंगा पुत्र भीष्म, पड़े थे बाण शैया पर, लेकिन हृदय में इच्छा थी गोविंद को देखने की, और भगवान ने चक्कर चलाया, पहुंचे कि नहीं? और भीष्म ने बोला है वहां पर, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता। कलेवरम्यावदिदं हिमम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनलसः मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुज। भीष्म कह रहे कि आज मरने के अंतिम अन्य संयुक्त प्राणा, मैं प्राण त्यागने की तैयारी में हूँ प्रभु, मैं आपके पास आ नहीं सकता, लेकिन मैंने प्रार्थना की तो आप मेरे पास आप भूलते नहीं, और अब आए हो ना तो छोड़ूंगा नहीं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता, वेट फॉर मी, मारी माटे उबा रहा था। मानो कृष्ण पूछे कब तक खड़ा रहा, मोबाइल देने लगा, रुक्मणी रात कहीं से युद्ध कर रहा हूँ, कब तक खड़ा रहा पिता मा। कलेवरम्यावदिदं हिनोम्यहं, जब तक मैं अपना ये शरीर न त्यागू तब तक आप यही खड़े। और कैसे खड़े रहिए, मुद्रा हम बताएंगे, स्माइलिंग, फोटो वाला कहता ना कि प्रसन्न सारुण लोचन, अरुण ये लाल जैसे कमल खिले हुए आंखें है ना आपकी, और आपका मुख प्रसन्न होना चाहिए। चतुर्भुज ध्यान पथ, मेरे ध्यान पथ में, मेरे नेत्र पथ में आपका यह श्री विग्रह देना चाहिए। और यही बात हरिदास ठाकुर ने कहा था कि मैं मध्य अंत समय है ये गौरा, मैं आपके वदन कमल को देखना चाहता हूँ। अंतिम मैं ये निवेदन देना चाहता हूँ, जैसे हम यहाँ गा रहे हैं जगन्नाथ स्वामी नयन, हम हृदय प्रार्थना करें ना, भले हम में सामर्थ्य है लेकिन बाकी बिहारी में सामर्थ्य है वो आ सकते, तो हम प्रार्थना इसलिए गा रहे समझ रहे हैं, और इसी भाव को लेकर भगवान हमारे पर अनुकंपा करे कि हमारे नयन पथ में आंखों में साक्षात प्रकट हो जाए। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बड़े विनम्र भाव से राधा भाव में अपने प्राणनाथ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरे आंखों के रास्ते पर पधारिए, मतलब मैं जहाँ भी देखो आपको ही देखो, नित्य आपका ही दर्शन करो, ये भाव। इसी तरह का आस्वादन दूसरे श्लोक का कल किया जाएगा, समय अपनी सीमा को बांध देता है, और हमको जो टाइम दिया गया था वो समाप्त हो गया, 9 बजे तक बोला था, फिर भी मैंने 7:20 को चालू किया, गाया कुछ कुछ जो भी मन स्मृति में अध्ययन अनुसार कहा, फिर भी मैंने पहले ही कहा जगन्नाथ अनंत है, इनका ये रचा हुआ महाप्रभु का गौरा का अष्टकम भी अनंत, लेकिन फिर भी हमने इसकी व्याख्या कुछ अनुवाद करे तो एटलीस्ट आप कभी भी गाओ तो कम से कम इनके भाव को इनके अर्थ को समझते हुए भक्ति बढ़ा सकते, प्रेम बढ़ा सकते। तो मैं धन्यवाद देता हूँ फिर से पुनः एक बार हमारे इस्कॉन एरोबी भक्तों को और हमारे महाप्रभु श्री गौरांग प्रभु कमेटी को और सभी भक्तों को ये विशेष चुना। मैं कभी भी कुछ भी कहता हूँ तो भक्तों को ही निवेदन करता हूँ कि आप क्या चाहते, किस उम्र में गया संडे को ही पिछले समय, तब तक फिर से उन्होंने कहा कि भरत महाराज जी कहिए, मैं बोला चलो क्योंकि हमारे को तो सीखो मुझसे ये क्यों ही थी। तो यहाँ के लोग कह रहे थे कभी ये लीला वो लीला, फिर अंत में निर्णय इन लोगों ने किया कि जगन्नाथ अष्टकम, तो अच्छा है इसमें कुछ जगन्नाथ जी की लीला भी कहेंगे हम, और विग्रह हमारे कितने साक्षात से भी अच्छे हैं ये भी सब सामने आ जाएगा आपके, और निश्चित है कि भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा। और उस बहाने हम स्मरण किए वृंदावन का, यमुना जी का, कृष्ण का, महिमा का, बस यही तो है श्रवण कीर्तन। फिर भी कुछ त्रुटि हो तो आप दयालु हो, क्षमा करें, क्योंकि जीव है यथामति बोलते हैं अपना समझ कर, लेकिन आप लोग अपने स्वभाव से क्षमा करते हुए आशीर्वाद रखिए कि आपकी वाणी से सेवा करते रहे जो भी नमिया है उस दिन। हरे कृष्ण शिव प्रभुपा की। कोई प्रश्न है किसी का इसके अंदर में, ऐसे प्रसाद व्यवस्था भी कर दी जाएगी। हमने जो अभी कहा ये शब्दों आपने सुना उसमें कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा हो, या जगन्नाथपुरी के विषय में या जगन्नाथ के विषय में, ऐसे हम सब जानते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन आप पूछ सकते हो तो किसी को पूछ के भी बताएंगे। वन विपिन मतलब वन फॉरेस्ट, और वो वहां पर विपिन शब्द का अर्थ वन, लेकिन वृंदावन क्योंकि यमुना के तट पे एक ही विपिन है, और फिर हमने कहा कि 12 वन मधुवन ये सब वन, तो विपिन मतलब फॉरेस्ट वन। अब बाद में पर्सनली भी मिल सकते हो, और मैं श्री गौरांग प्रभु को निवेदन करूंगा कुछ समाप्त कर। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय, गौर हरि प्रेम।
हरे कृष्ण। तो कल